मेरे अजीज साथियों आदाब, आज 11 जनवरी 2017 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मैं यानी कि डॉक्टर विजय अग्रवाल और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन 7 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की बस अभी कुछ ही दिनों के बाद होने वाली क्लासेस के लिए एडमिशन्स लिए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं अमित भट्ट, आप हल्द्वानी उत्तराखंड से हैं और हल्द्वानी उत्तराखंड से ही हैं पुष्पा भट्ट। तीसरे मित्र हैं प्रीतम कुमार संजय कोल्टे जो औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं, विक्की वर्मा आप मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तम मिश्रा आप कुशीनगर आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, गौतम कुमार दिल्ली से हैं और नफीस अहमद गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो अमित, पुष्पा, प्रीतम, विक्की, उत्तम, गौतम और नफीस, आप सभी 7 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्वागत के इस क्रम के बाद में एक छोटी सी आपको सूचना देना चाहता हूं, क्योंकि इस बीच में मुझे कुछ मेल प्राप्त हुए हैं और वो मेल दिल्ली के स्टूडेंट के हैं और उन्होंने एक जानकारी चाहिए है। आपको मालूम होगा कि अभी दिल्ली का जो प्रगति मैदान है वहां विश्व पुस्तक मेला चल रहा है, कुछ ही दिन बचे हैं। जनरली मैं विश्व पुस्तक मेला में जाया करता हूं, पिछले साल भी मैं नहीं जा पाया था, इस बार भी मैं नहीं जा पाया हूं। तो बहुत से स्टूडेंट ने उस पुरानी स्मृति को ध्यान में रखते हुए मुझसे जानना चाहा है कि सर, यदि आप विश्व पुस्तक मेला में आए हुए हों तो हम लोग मिलना चाहेंगे। तो मित्रों, एक छोटी सी सूचना यह है कि पहला तो यह है कि आप लोगों के जो मिलना चाहने की जो भावना है, मैं उसका पूरा सम्मान करते हुए आप सबसे क्षमा चाहता हूं। और क्षमा इसलिए नहीं कि मैं मिलना नहीं चाहता, बल्कि क्षमा इसलिए कि मैं इस बार के विश्व पुस्तक मेले में नहीं जा पाया हूं और नहीं जा पा रहा हूं। तो मित्रों, ये आप लोगों को इस सूचना में दे रहा हूं ताकि आप लोगों को ये जानकारी मिल जाए और आप लोग अकॉर्डिंगली फिर अपना आगे का प्रोग्राम बना सके। तो दोस्तों, अब हम लोग आते हैं न्यूज एनालिसिस पर, जिसकी शुरुआत करते हैं AIR न्यूज से। फ्रेंड्स, 2-3 इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पहले तो मैं कंटेंट के बारे में बता दूं कि 2 सूचनाएं हैं। आपने देखा कि सुना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जब गुजरात अभी गए, कल उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की है। आजकल बहुत से स्टेट ऐसा करने लगे हैं अपने राज्यों में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए, इस तरह के मेले का आयोजन करते हैं, जिसकी शुरुआत इनफैक्ट मैं समझता हूं कि शायद गुजरात स्टेट ने ही की थी और उस समय हो गई थी जब मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री थे। उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 इम्पॉर्टेंट शब्द का इस्तेमाल किया। एक तो डिजिटलीकरण का किया है, वो आप हम सब देख ही रहे हैं कि जिस तरह से कैशलेस सोसाइटी की बात हो रही है वो डिजिटलीकरण के माध्यम से ही संभव है और भारत में एक तरह से उस क्षेत्र में बहुत तेजी से अपनी रफ्तार शुरू कर दी है और आप देखेंगे कि सिविल सर्विस में भी इस पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ई गवर्नेंस शब्द का इस्तेमाल किया था, वो भी कहीं न कहीं डिजिटलीकरण से ही जुड़ा हुआ है और ई गवर्नेंस आपके सिविल सर्विस के सिलेबस में भी है। चूंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो मेरी सलाह केवल यह है कि ई गवर्नेंस और डिजिटलाइजेशन, इन दोनों टॉपिक को आप इंपॉर्टेंट टॉपिक मानकर चलें और इन पर ठीक ठाक तैयारी कर लें। दूसरी जो खबर कंटेंट के रूप में आपने देखा सुना, मित्रों जब मैं देखा कहूं तो मुंह से निकल जाता है ना, थोड़ा सा प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें दिमाग में होती है ना कि वो लाइफ मैनेजमेंट वाला भी रहता है और फिर दूरदर्शन भी होता है और फिर कुछ चीजें सुनी हुई होती हैं, कुछ चीजें देखी हुई होती हैं, कुछ चीजें पढ़ी हुई होती हैं, कुछ चीजें सोची हुई होती हैं, तो पता नहीं मुंह से कब क्या निकल जाए, तो प्लीज उसको आप लोग करेक्ट कर लिया कीजिए। वो मित्रों, जो रेडियो न्यूज में था कि जो हमारा भारतीय ओलंपिक संघ है उसने 2 अपने पूर्व अध्यक्षों को आजीवन अध्यक्ष बनाया था, आपको मालूम है, इसके पहले हम लोगों ने चर्चा भी की थी और न्यूज में आपने सुना भी है, सुरेश कलमाड़ी जी को, तो उन्होंने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया था। और इसके बाद अभय चौटाला जी, दोनों के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, जिसको लेकर के सरकार ने विरोध किया था संघ के सामने और अपने संबंध तोड़ लिए थे। उसकी लोगों ने थोड़ी सी आलोचना भी की थी, हालांकि बहुत ज्यादा इस पर नहीं लिखा गया अखबारों में, मीडिया ने इसे बहुत ज्यादा नहीं उठाया, पता नहीं क्यों। अब ठीक है, उनकी अपनी दृष्टि हो सकती है, क्योंकि एक ऐसी सरकार जो सही मायने में भ्रष्टाचार को खत्म करना चाह रही है, नो डाउट कि अब उनके नियम में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जो इससे पहले भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हों, उन्हें उनके पदों से हटाया जा चुका हो, पूरे देश ने जिनकी आलोचना की हो, यदि आप उन्हें फिर से इतने प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन का अगर आजीवन अध्यक्ष बना रहे हैं, तो आप सम्मान ही दे रहे हैं। तो इससे नो डाउट कि जो मैसेज जाता है पूरे देश में, वो अच्छा नहीं जाता। भले ही उन पदों पर रहने के बाद उनको अधिकार कुछ भी नहीं होता, लेकिन सम्मान से बड़ा और अधिकार क्या हो सकता है। तो सरकार ने बहुत ही अप्रोप्रिएट, मतलब मुझे लगता है कि कदम उठाया था, और अंत में जाकर के अब संघ ने यह फैसला किया है कि नहीं, वो अपने इस निर्णय को वापस लेते हैं और वो आजीवन अध्यक्ष नहीं बनाने जा रहे हैं। तो सरकार ने फिर उसका वेलकम किया है, उनके निर्णय का। तो ये एक कंटेंट है, एक तथ्य है। अब आप देखिए कि इसको आप खेल से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वहां इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ये फिट बैठता है तो। भ्रष्टाचार से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार करप्शन का संबंध लॉ से तो है ही, है ना। जो भी लॉ के अगेंस्ट हम करते हैं वो भ्रष्ट आचरण ही होता है, लेकिन एक नैतिकता भी होती है, एथिक्स भी होता है। और इस प्रकार आप इसी कंटेंट का इस्तेमाल अपने फोर्थ पेपर के लिए भी कर सकते हैं, जो मेंस का फोर्थ पेपर जनरल स्टडीज का होता है, जो एथिक्स मॉरलिटी इंटेग्रिटी का पेपर होता है, एप्टीट्यूड का, वहां भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां लॉ का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है, लेकिन एथिकली इट इज रॉन्ग, गलत है। तो इस तरीके से मित्रों, आप एक ही देखी कंटेंट है और उस एक ही कंटेंट का उपयोग आप कई कई अपने उत्तरों को मजबूत बनाने में, अपडेट करने में, लेटेस्ट बनाने में कर सकते हैं। तो इससे आपकी एनालिसिस पावर का भी पता चलता है और यह भी पता चलता है कि आप कैसे चीजों का इस्तेमाल, एक ही चीज होती है उसका बहुउद्देशीय इस्तेमाल करने की क्षमता रखते हैं। तो नो डाउट कि ये कहीं ना कहीं आपकी एक क्वालिटी ऑफ माइंड को बताता है। तो दोस्तों, ये एक दूसरा कंटेंट था। तीसरी जो खबर थी, जो मैं समझता हूं कि टॉपिक के रूप में इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको आप एक टॉपिक मान करके चल सकते हैं। अभी तो मैंने दो जो बताए हैं, ये कंटेंट है, एक तत्व है, तथ्य है, जानकारी है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। ए टॉपिक इस मायने में जो एनजीओ को लेकर के आपने खबर सुनी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, का पार्ट से, जो सरकारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ग्रामीण मंत्रालय का एक विभाग है, और आपको चाहिए कि का पार्ट के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि उसकी बात आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एनजीओ है हमारे यहां, लगभग 32 लाख एनजीओ हैं, उन एनजीओ का ऑडिट करें और इसकी रिपोर्ट मार्च तक सौंपे। इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने कहा, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक टॉपिक है। अब आप देखिए कि इसमें कितने सारे टॉपिक आ जाते हैं और अब आप इस टॉपिक को कितने डायमेंशन से देख सकते हैं। पहली बात तो ये एनजीओ का ही है, सीधे सीधे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका टॉपिक तो है ही, मेन तो ये दिखाई ही दे रहा है। आपको चाहिए कि आप जो एनजीओज होते हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हासिल कर लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल हम लोगों ने प्रेशर ग्रुप के बारे में, कल या परसों प्रेशर ग्रुप के बारे में बात की थी। प्रेशर ग्रुप अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो एनजीओ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं। इससे ठीक पहले, पिछले सप्ताह शायद हम लोगों ने चर्चा की थी, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, कि किस तरीके से सरकार ने लगभग 20,000 जो एनजीओ हैं उनको, उनके पंजीकरण को रद्द किया। हालांकि वो जो रद्द हुआ था वो विदेशी धन के मामलों को लेकर हुआ था, क्योंकि विदेशी धन जो भी एनजीओ लेता है उसे हमारा जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 है, उसके तहत कुछ दायित्व दिए गए हैं सरकार को, उन्हें सारी जानकारियां देनी होती है, वो जानकारियां फुलफिल नहीं कर रहे होंगे। और ये दुनिया के किसी भी देश में होता है कि अगर कोई विदेशी पैसा आ रहा है किसी संगठन के पास, तो सरकार उस पर निगाह रखेगी ही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन पैसों का इस्तेमाल राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध हो रहा हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध हो रहा हो। ये दुनिया के सभी देशों में है, तो हमारे यहां भी अगर है तो कोई ऐसा नहीं कि हम कोई डेमोक्रेटिक राइट का उल्लंघन कर रहे हैं। तो मित्रों उसी के कंटिन्यूएशन में देखिए कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि जो एनजीओ जो रजिस्टर्ड एनजीओ होते हैं, देखिए जरूरी नहीं कि आप एनजीओ को रजिस्टर्ड ही कराएं, आप चाहें तो आप खुले रूप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको आप रजिस्टर्ड कराते हैं तो कुछ फायदे तो आपको मिलते हैं, जैसे आपकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है तो आपको लोग पैसा देना शुरू कर देंगे एनजीओ के लिए। एनजीओ मतलब समाज सेवी संस्था कह लीजिए, जो पुराने समय में हमारे यहां हुआ करती थी, स्वयंसेवी संगठन कह सकते हैं, आज वो स्वैच्छिक संगठन भी कहे जाते हैं, तो आपकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। दूसरा यह है कि सरकार भी एनजीओ को बहुत धन देती है, अनुदान देती है काम करने के लिए, सरकार सहयोग देने के लिए, तो सरकार केवल उन्हीं को पैसा दे सकती है जो रजिस्टर्ड होंगे। तो ज्यादातर एनजीओ रजिस्टर्ड अपने को करा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं आपको पैसा देने लेने का अधिकार मिल जाता है, और जो पैसा देता है उसको इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है, तो आपको पैसा मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो और ये सब कुछ होता है केवल रजिस्ट्रेशन कराने से। तो स्वाभाविक है कि जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो फिर आप उनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कीजिए। उसका एक तत्व जो भी चुनाव उड़ाव होने हैं वो उसके संगठनात्मक नियम कानून है, लेकिन जो आप पैसा ले रहे हैं उस पैसे का आप उपयोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस कितना कर रहे हैं, ये तो बताइए, और इसी को ऑडिट कहा जाता है। तो हमारे यहां ज्यादातर एनजीओ कोई रिकॉर्ड ही नहीं देते, कोई हिसाब किताब नहीं देते और पैसा लिए जा रहे हैं। सच पूछे मित्रों तो आपको नहीं लगता है कि जब वो ऑलरेडी कानून में है और उनको ऑडिट कराना है और उसके लिए कोई संस्था बनी हुई है, तो संस्था अपने आप में ही उनको क्यों नहीं कदम उठाती, सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि आप इनका ऑडिट करके मार्च तक हमको बताइए। अब आप देख रहे हैं ना, तो हम बात कर रहे थे एनजीओ की, अब बात कहां आ गई कार्यपालिका वर्सेस न्यायपालिका की, कि मतलब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है। तो जो एग्जीक्यूटिव है, जो प्रशासन है, वो प्रशासन क्या कर रही है, वो कदम क्यों नहीं उठा रही है, वो अपने दायित्वों को क्यों नहीं निभा रही है। देखिए चलिए एनजीओ को तो हम मान लेते हैं कि भैया लोग की एक हैबिट होती है कि कानून से बचते रहो, यार जब तक मुसीबत ना आ जाए तब तक टालते रहो। चलिए संस्था इस अप्रोच को लेकर के चल रहे हैं, व्यक्ति भी करते हैं संस्था भी करती है, लेकिन जो प्रशासन है वो किस लिए है। तो यहीं पर वो बात आ जाती है कि अगर प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है तो क्या किया जाए। तो फिर हमारे पास एक और टॉपिक हमको मिलता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो आदेश दिया है ये जनहित याचिका की सुनवाई में दिया है, तो हमको फिर से इसी के तहत एक और पॉइंट मिल गया, जनहित याचिका। यानी जनहित याचिका पर अगर आप कोई प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो आप उसमें भी इस इंसिडेंस को डाल सकते हैं, क्योंकि एक लेटेस्ट इंसिडेंस है और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंस है, क्योंकि एनजीओ के पास जो है वो पब्लिक फंड है, लोगों का पैसा है, राइट। सरकार का जो पैसा है वो लोगों का ही पैसा कहलाता है, तो वो ऐसा नहीं कि उसका इस्तेमाल हो किसी भी तरीके से करें। तो अब आप देखिए कि आप एनजीओ पर इस घटना को ले सकते हैं, इसके बाद कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका जिसको हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं उस पर भी ले सकते हैं, आप इस बात में भी इस घटना को ले इस घटना का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे यहां कानूनों की जरूरत नहीं है। सच तो है कि जरूरत इस बात की है कि उन कानूनों को सही तरीके से लागू किया जाए, और लागू करने वाला प्रशासन ऑलरेडी है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन है, रेगुलेशन नहीं। यानी कि विधायिका तो सब कुछ कर रही है, अगर आप सिद्ध करना चाहे तो कह सकते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम हो रही है वो एग्जीक्यूटिव के साथ हो रही है, आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहां फिर आप एक हमारे यहां जो डेमोक्रेटिक एक जागरूकता पैदा हो रही है, आप उसके तहत PIL में भी ले सकते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर हमारे यहां यह अधिक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुरू नहीं हुआ होता, जो 1975-76 के बाद 80 के बाद से तेजी से बढ़ा है, तो ये एनजीओ ऐसे ही करते रहते, कौन उठाने वाला था, क्योंकि कोर्ट अपनी तरफ से कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन जब से जनहित याचिकाएं आई हैं आप देखिए कि कितना जबरदस्त बदलाव आया हुआ है। RTI और जनहित याचिका ने तो हिंदुस्तान में एक तरह से लोकतांत्रिक क्रांति सी ला दी है, बावजूद इसके कि अभी इनमें काफी कुछ किया जाना है और काफी कुछ कमियां अभी हैं भी। तो मित्रों ये मैंने एनजीओ के माध्यम से आपसे सिविल सर्विस की तैयारी करने का कुछ जो फार्मूले हो सकते हैं, कुछ तरीके हो सकते हैं, उसके बारे में बताया है, और एनजीओ के बारे में कुछ जानकारियां भी आपको दी हैं। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के न्यूज़पेपर्स पर, और आज के न्यूज़पेपर्स में फ्रेंड्स दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अपने आप में पूरे तो नहीं है लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक तो है रिजर्व बैंक के स्वतंत्रता पर। आपको हम लोगों ने कल आप बात की थी, आपको ध्यान होगा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी कल नहीं तो परसों बात की होगी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी किस तरीके से उसने मतलब रिजर्व बैंक के गवर्नर से पूछा है कि जो नोटबंदी का मामला है ये कैसे कैसे हुआ है। और इसकी जो प्रोसीजर है वो ये है कि पहले जो रिजर्व बैंक की अपनी अपनी जो परिषद है, जो गवर्निंग बॉडी है, संचालन मंडल है, संचालक मंडल है जिसको गवर्नेंस कहते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, वो निर्णय लेंगे और फिर वो सरकार से कहेंगे कि इस तरह से नोटबंदी कीजिए, किया जा सकता है तो सरकार निर्णय लेगी। इसको लेकर के अभी एक विवाद की स्थिति पैदा हो गई है, अखबारों में आप पढ़ रहे हैं। अभी जो खबर सामने आ रही है तो उससे ऐसा लग रहा है कि सरकार के द्वारा ही उठाया गया कदम है। इसमें रिजर्व बैंक को कहा गया, तब रिजर्व बैंक ने फटाफट मीटिंग की और सरकार से रिकमेंड किया और सरकार ने तुरंत घोषणा कर दी। आप इस तरह की बातें अखबारों में पढ़ रहे हैं। तो यहां पर जो सवाल उठता है वो है कि रिजर्व बैंक कितना स्वतंत्र है, कितना स्वतंत्र होना चाहिए, वो सरकार को फॉलो करे या स्वतंत्र रूप से काम करे, या दोनों में कोई विवाद की स्थिति में कैसे दोनों की स्वतंत्रता बनी रहे, क्योंकि गवर्नमेंट है उसको पब्लिक और सिस्टम को देखना है, रिजर्व बैंक है उसको देश की मौद्रिक नीतियों को देखना है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज के अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक के सामने अपने देश की अर्थव्यवस्था के इंटरेस्ट है। तो इन दोनों के बीच में किस तरह से स्ट्रगल हो, क्या क्या होना चाहिए, तो एक बहुत अच्छा ये प्रश्न इमर्ज हो रहा है सिविल सर्विसेज मेंस के लिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसको लेकर के इकोनॉमिक टाइम्स ने आज एडिटोरियल कमेंट भी किया है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, और न्यूज आइटम भी है वो भी आप सब देखिएगा। मैं न्यूज आइटम भी इससे रिलेटेड जो है दैनिक भास्कर का वो आपको उपलब्ध करा रहा हूं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो खासकर पुदुचेरी को लेकर के, जिसे हम पांडिचेरी कहते हैं। पांडिचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी जी, जो हमारी हिंदुस्तान की प्रथम आईपीएस ऑफिसर, महिला आईपीएस ऑफिसर भी रही हैं उनमें, और सरकार में अब थोड़ी सी तनातनी की स्थिति आ गई है। इस अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, उन्होंने कहा कि सरकार जो बजट पेश करेगी वो ऐसा नहीं है कि जो वो कह देंगे वही सब कुछ होगा, उसमें मेरा भी मतलब हस्तक्षेप रहेगा। और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो मेरा दफ्तर है वो पोस्ट ऑफिस की तरह काम नहीं करेगा, ये बल्कि एक निर्णायक ऑफिस की तरह काम करेगा। मतलब लगभग वही स्थिति बनने जा रही है जो दिल्ली में आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री और जो उस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे नजीब जंग जी के बीच में एक जंग सी देखी, एक लड़ाई सी देखी, एक विवाद की स्थिति देखी। अब यहां फिर से सवाल उठता है जिस पर उच्चतम न्यायालय ने कहा भी था, एक तरफ इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड बॉडी है जिसके हेड मुख्यमंत्री हैं, और एक तरफ सेंटर के द्वारा नॉमिनेटेड प्रशासक की हैसियत या गवर्नर की हैसियत, लेफ्टिनेंट जिनका सरनेम है वो है, जो राज्यों में गवर्नर होते हैं, यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। अब सवाल ये उठता है मित्रों कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सब कुछ करेंगे तो फिर इस इलेक्टेड बॉडी की जरूरत क्या है, और अगर इलेक्टेड बॉडी ही सब कुछ करेंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की जरूरत क्या है, और अगर कोई जरूरत महसूस की जा रही है तो फिर इनके काम या अधिकार सीमाएं मर्यादाएं बिल्कुल डिफाइन क्यों नहीं है कि इस तरह के विवाद की स्थिति नहीं आए, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र के इशारे पर कुछ उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से राज्यों में राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम करते हैं। तो ये केवल सवाल है, ये तो एक घटना घटी है जिसको लेकर के पॉलिटिकल सर्किल में बहस शुरू हुई है, और सिविल सर्विस यहीं से क्वेश्चन निकालता भी है। तो मित्रों इसको लेकर के भी मैं आपको आज दो क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, एक दैनिक हिंदुस्तान का है हिंदी में और एक इकोनॉमिक टाइम्स का है इंग्लिश में, आप इसे भी देख लीजिएगा। और आपको मैं एक दो आर्टिकल्स और प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें एक बहुत ही मजेदार आर्टिकल है प्रीतिश नांदी जी का जो दैनिक भास्कर में छपा है करप्शन के ऊपर, और चूंकि उनकी लिखने की शैली बड़ी अच्छी होती है तो मैं उनका फैन भी हूं, उनके आर्टिकल्स हमेशा पढ़ता हूं, तो आप लोगों को भी पढ़ने के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। किससे कहानियों के अंदाज में वो बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं और वही कला आपको यहां देखने को मिलेगी और आपको मजा आएगा, और जो आर्टिकल से मित्रों आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख लीजिएगा। तो दोस्तों न्यूज़पेपर्स से बस इतना ही, अब मैं आता हूं ईमेल पर, और सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इनमें से कुछ मित्रों के नाम हैं हनी सिंह, विजय कुमार हजारा धनबाद से, शिव प्रताप सिंह लक्ष्मणपुर यूपी से, डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव, रजत बोलपुर से, घनश्याम भारद्वाज शिमला हिमाचल प्रदेश से, गुलाब खेड़ा, महिपाल कुछ इसी तरह का नाम है मित्रों, शुभम टोपनावर, राकेश ठाकुर, राज यादव, दुबे पवन गुजरात से, अनीश रंजन सरकार मलकानगिर उड़ीसा से, रूपेश शर्मा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से और राहुल कुमार औरंगाबाद बिहार से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।